శిశిరేణోదర్యో సమప్యో కుప్పయంతస్
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित देवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ हमारी सातवीं पुस्तक प्रारंभ होती है। तो सातवीं पुस्तक में अब यह ये जो धवला टीका का द्वितीय खंड है, यहाँ लिखा देखिए, श्री वीर सेनाय वीरयेन विरचित धवला टीका समन्वितो तस्य द्वितीय खंडो। ये द्वितीय खंड है। पहला तो जीव स्थान था ना, जीव स्थान हमने कल पढ़ा था, जीव स्थान समाप्त होता है। अब यहाँ खुद्दा बंदो, इसका नाम अभी खुद्दा बंद, ये द्वितीय खंड यहाँ से प्रारंभ होता है। और उसमें बंधक संत परूपणा, यानी बंधकों की प्ररूपणा करेंगे। यहाँ बंधक छह द्रव्य में बंधक कौन होगे? जीव है, जीव बंध करता है ना, तो यहाँ बंध करने वाले ऐसे जीवों की यहाँ प्ररूपणा की जाएगी। अभी जो हमने मंगलाचरण पढ़ा है उसका नीचे अर्थ दिया, देखिए ये लाइन के नीचे, जिन्होंने भी धरसेन आचार्य की बात करे, यानी जिन धरसेन आचार्य मुनि ने महाकर्म प्रकृति प्रावृत, हमने पहले देखा था कि ये जो षटखंडागम जो है उसकी रचना कैसे कैसे, कौन कौन से अनुयोग से कैसे उसके विषय लिए गए हैं। धवला प्रथम भाग में हमने उसकी बहुत विस्तार से चर्चा की थी, अभी भूल गए वो बात अलग है। तो वहाँ जो हमने महाकर्म प्रावृत नाम का जो कुछ टेबल देखा था, उसमें देखा था उस महाकर्म प्रकृति प्रावृत रूपी शैल का अपने बुद्धि रूपी शिर से उद्धार किया, यानी वो महापर्वत अपने बुद्धि में धारण किया और पुष्पदंताचार्य को समर्पित किया। क्योंकि ये जो सारा जो महाकर्म प्रवृत्ति जो प्रावृत है, उसमें से सारा ये जो माल है, जो सारा ज्ञान है, धरसेन आचार्य के ख्याल में आ गया कि अभी वो तो अपने को कहते कि मेरा ही ज्ञान इतना हीन हो गया अपना, तो आगे चलकर अभी तो ये सारा लुप्त तो हो जाएगा। उसके पहले तो सारे मुखोद्गत था, कंठस्थ था लोगों को, आचार्य अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, उनको कंठस्थ हो जाता था और ऐसे आगे आगे चलता था। फिर भी जैसे टाइम आगे चला गया, काल आगे गया, तो पहले तो 12 अंगों का ज्ञान था, फिर उसमें से कुछ अंगों का ज्ञान रह गया, अब उसमें से भी बहुत कुछ पूर्व का कुछ भाग रह गया। तो उन्होंने जाना कि अभी ये काल दोष से ये लुप्त तो प्राय होने जाने वाला है, तब इसको लिखित रूप से लिख दे। तो उन्होंने वो, हमने कथा तो सुनी कि वो उन्होंने ऐसे मुनियों के संघ को बताया कि हमें कोई ऐसे पात्र शिष्य चाहिए, तो पुष्पदंत और भूतबली आचार्य वहाँ आए थे और फिर उन्होंने ये धारण किया और फिर उन्होंने लिखित रूप से शास्त्रों की रचना की थी, जिसको षटखंडागम कहते हैं। तो ये जो महाकर्म प्रकृति प्रावृत रूपी शैल का अपने बुद्धि रूपी शिर से उद्धार किया और पुष्पदंताचार्य को समर्पित किया, इन्हें उनको पढ़ाया, ऐसे धरसेनाचार्य जयवंत होवे। अब यहाँ से सूत्र प्रारंभ करते हैं। जे ते बंधगा नाम तेसिम इमो निर्देशो, जो वे बंधक जीव है उनका यहाँ निर्देश किया जाता है। निर्देश यानी कथन, यहाँ बंधक जीवों का निर्देश यानी कथन किया जाएगा। अब शंका कर पूछता है, जो वे बंधक है, ऐसा यह वचन बंधकों की पूर्व में प्रसिद्धि को सूचित करता है। अतः क्या कहते हैं, जो वे बंधक है ऐसा कहा, यानी बंधक है ऐसा कहीं तो पहले लिखा हुआ है, तो पहले कहीं ना कहीं ये बात आई हुई है। अतः पहले किस ग्रंथ में प्रसिद्ध बंधकों की यह सूचना है, कौन से ग्रंथ में यह बंधकों की पहले बात आई थी, वे ग्रंथ कौन से है, ऐसा यहाँ प्रश्नकार का प्रश्न है, उसका समाधान। यह सूचना महाकर्म प्रकृति प्रावृत में प्रसिद्ध बंधकों की है। ये महाकर्म प्रकृति प्रावृत नाम का जो ग्रंथ है उसमें ये बंधकों की बात आई थी, वह इस प्रकार है। महाकर्म प्रकृति प्रावृत के कृति वेदना आदि 24 अनुयोग द्वारों में, उसके 24 अनुयोग द्वार, उसके महाकर्म प्रकृति प्रावृत जो है उसके 24 भेद बताए थे, 24 जो उसको अनुयोग द्वार कहा था, उसमें से छठे अनुयोग द्वार बंधन, छठा जो अनुयोग द्वार है उसका नाम है बंधन। वो जो बंधन नाम का अनुयोग द्वार है उसके उसमें और 4 अधिकार है। बंधन नाम का जो अधिकार है उसमें अनुयोग द्वार है उसमें 4 उसके और सब डिविजन है। तो ये उसके नाम क्या है वो 4 जो है, तो बंधन में से बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। ये बंधक के बाद कॉमा चाहिए, यानी उसमें बंधन नाम का जो अनुयोग द्वार है उसमें काहे का वर्ण है, बंध, बंधक यानी बांधने वाला, बंध करने वाला, बंधनीय यानी जो बंधा जाता है, तो बंधक तो जीव होगा और बंधनीय कर्म होगा और बंध विधान और बंध का जो प्रोसेस है, बंधनीय यानी बंधने योग्य और बंधक यानी बंध करने वाला। उनमें जो बंधक नामा दूसरा अधिकार है वही इस सूत्र वचन द्वारा सूचित किया गया है, यानी उसकी यहाँ बात उठाई है। इसलिए जो वह बंधक है ऐसा कहा, क्योंकि यह ऐसे ही किसी मुनि ने अपने मन से नहीं लिखा है, ये तो ओरिजिन है सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि, जिसके अनुसार गंधर्वों ने 12 अंगों की रचना की थी और उसमें वो कौन से अधिकार से कौन से अनुयोग द्वार से में ये बात निकाली है उसकी यहाँ सूचना देते। कहने का तात्पर्य यह है जो वे महाकर्म प्रकृति प्रावृत में बंधक कहकर निर्दिष्ट किए गए हैं उन्हीं का यहाँ निर्देश है, यानी उस ग्रंथ में जिसको बंधक कहा उसी की बात यहाँ फिर हमें समझा रहे हैं। बंधक जीव ही होते हैं, अन्य कोई बंधक नहीं है, जीव ही बंधक है, क्योंकि मिथ्यात्व आदि बंधक के कारणों से रहित अजीव के बंधक भाव की उपपत्ति नहीं बनती। ये मिथ्यात्व आदि बंधक के कारण मालूम है कि बंधक के कारण कौन कौन से, मिथ्यात्व आदि में दीपेश भाई आपको पता है बंधक क्यों होता है विशिष्ट? हाँ, मोहनीय के कारण। तो मोहनीय में कौन कौन आया, मिथ्यात्व आया और कषाय आ गए, तो क्या इतने मात्र से बंध होता है? हाँ आप बोलो, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के हेतु है ना। तत्वार सूत्र में भी आया है, 8वें अधिकार के पहले ही सूत्र में आया है ये, इति बंध हेतु है, ऐसा वहाँ लिखा है। तो ये बंध के जो कारण है वो किस में पाए जाते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये तो किसी पुद्गल में नहीं पाए जाते, जीव में ही पाए जाते हैं। इसलिए ये जिनमें ये बंध के कारण नहीं है, ऐसे बंध कारणों से रहित ऐसे जो अजीव पदार्थ है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल है, उसमें बंधक भाव की उपपत्ति नहीं बनती, उसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है। शंका, उन्हीं बंधक जीवों का जीव स्थान खंड में, अभी तक हमने जो 6 पुस्तकें पढ़ी ना वो जीव स्थान खंड था, अभी द्वितीय खंड खुद्दा बंध शुरू हो गए यहाँ। तो जीव स्थान में भी बंधक तो जीव है और जीव स्थान में जीवों का ही तो वर्णन आया था, तो जीव स्थान खंड में 14 गुण स्थानों की विशेषता सहित 14 मार्गण स्थानों में सत संख्या आदि 8 अनुयोगों के द्वारा अन्वेषण किया गया है। अभी हमने जो जीव स्थान पढ़ा उसमें हमने क्या इन्हीं जीवों की तो बात की, उसमें 14 गुणस्थान भी बताए और उसमें जो विशेषताएं हैं जिसको हम 14 मार्गणा कहते हैं, उसकी बात आएगी अभी 14 मार्गणा कौन सी है। तो 14 मार्गणाओं की विशेषता सहित हमने 14 गुणस्थानों का वर्णन पढ़ा, तो उसमें सत यानी जो है अस्तित्व उसकी बात है, फिर संख्या कितनी है, ये 8 अनियोग द्वार देखे ना, कौन कौन से देखे, सत संख्या हा? क्षेत्र स्पर्शन अंतर काल अल्पभूत भाव वगैरह जो देखे हमने, 8 अनियोग द्वार देखे हमने, तो उनकी बात तो हमने बहुत विस्तार से देखी थी। अब सत आदि प्ररूपणाओं द्वारा जाने हुए उन्हीं जीवों का फिर प्ररूपण करने पर पुनरुक्ति दोष उत्पन्न होता है। शंकाकार को तो कौन सा दोष आएगा इसकी चिंता पड़ी है? तो कहते ये बार बार फिर उन्हीं जीवों का आप वर्णन करेंगे तो रिपीटिशन वाला दोष आ जाएगा, ऐसा उसका कहना है। उसका समाधान, पुनरुक्ति दोष प्राप्त होता यदि उन जीवों का उन्हीं गुणस्थानों की विशेषता सहित 14 मार्गणाओं में उन्हीं 8 अनियोगों द्वारा अन्वेषण किया जाता। पुनरुक्ति कब कहते, फिर दोबारा गुणस्थान की और मार्गणा स्थानों की चर्चा करते तो रिपीटिशन हो जाता, परंतु यहाँ क्या है, किंतु यहाँ तो 14 गुणस्थानों की विशेषता को छोड़कर, अब यहाँ गुणस्थानों की विशेषताओं को छोड़कर 14 मार्गणा स्थानों में 11 अनुयोग द्वारों से पूर्वोक्त जीवों की प्ररूपणा की जा रही है। वहाँ 8 अनुयोग द्वार थे, यहाँ कुछ अलग पद्धति से इन 14 मार्गणाओं में वर्णन करेंगे। अब ये कौन सी पद्धति है, ये कैसे वर्णन करेंगे, ये तो विषय आने वाला है। अतः यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं प्राप्त होगा। फिर शंकर, जीव स्थान खंड में जो प्ररूपणा की गई है उसी से यहाँ प्ररूपित किए जाने वाले अर्थ का ज्ञान हो जाता है। जो हमने मार्गणाओं में और गुणस्थानों में बातें देखी थी, तो उसी से कौन से जीव को कैसा बंध है, कितना बंध करता है, ये सारी बातें जानने में आती है। अतः इस प्ररूपणा का हमें तो किंचित भी फल दिखाई नहीं देता, तो यहाँ और प्ररूपणा करने पर ज्ञान में कुछ अधिक विशेषता हो जाएगी, ऐसे तो हमें नहीं भासित होता, ऐसा शंकाकार की शंका है। उसका समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्गणा स्थानों में 14 गुण स्थानों की सत संख्या आदि रूप प्ररूपणा से जो पहले मार्गणा स्थानों में गुणस्थानों संबंधी जो चर्चा की थी, उसमें सत संख्या वगैरह 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 में वो क्षेत्र स्पर्शन अंतर काल आदि समझ लेना, उस प्ररूपणा से, प्ररूपणा यानी उसका व्याख्यान, उसका जो विशेष वर्णन, उसका कथन, उससे मार्गणा स्थान विशेषित जीव प्ररूपणा का एकत्व नहीं पाया जाता। देखो मार्गणा स्थानों में जो 14 गुणस्थानों की बात है वो अलग है, अब यहाँ 14 मार्गणा स्थानों में कुछ 11 अलग अनुयोग द्वार बताने वाले हैं, तो उसका और इसका डायरेक्ट ऐसा एकत्व नहीं है, वे बातें वही नहीं है, कुछ इसमें विशेषताएं होगी। यदि उस प्ररूपणा से इस प्ररूपणा में एकत्व होता तो हम जान लेते, आचार्य कहते हैं एकत्व होता तो हमें भी पता चलता और हम ऐसा बता देते, किंतु हमें उन दोनों प्ररूपणाओं में एकत्व दिखाई नहीं देता। एक्चुअली यहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं, दंड चाहिए था। अथवा इस क्रम से स्थित द्रव्यादि अनुयोग द्वारों को लेकर जीव स्थान खंड की रचना की गई है, यह जतलाने के लिए बंधकों की प्ररूपणा प्रस्तुत है। देखो द्रव्यादि अनुयोग द्वार, द्रव्य अनुयोग द्वार यानी वो संख्या, द्रव्यानुयोग यानी यहाँ संख्या की प्ररूपणा करने वाला, जो संख्या प्ररूपणा हमने देखी थी पहले सत प्ररूपणा फिर संख्या प्ररूपणा, उसको द्रव्यानुयोग द्वार कहते हैं। तो जीव खंड में वो सारी बातें बताई थी, अब यहाँ पर बंधकों की बात अलग से बताएंगे। अतएव बंधकों की प्ररूपणा न्याय प्राप्त है, बंधक जीवों का कथन करना वो योग्य है, ऐसा यहाँ बताते हैं। अब यहाँ से विषय शुरू करते हैं। बंधक चार प्रकार के हैं। हमने देखा था किसी भी वर्णन का, बात का शास्त्र में वर्णन आता है, कोई भी विषय है, तो उसको अभी हमने नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव लगाते हैं उसका, है ना? इसको क्या कहते हैं? ये चार चार बातें लगाते हैं, उसको कुछ नाम है। हाँ, निक्षेप, निक्षेप कहते ना इसको, नय और निक्षेप, ऐसे दो बातें अपने पढ़ी होगी। हाँ, सत्रह सूत्र में भी आती है। तो नए तो ज्ञान में, ज्ञान के जो अलग अलग जिस एंगल से हम वस्तु को देखते हैं, उस ज्ञान को वहाँ नए तो ज्ञान में लगेंगे। और निक्षेप, हम वस्तु में जो कुछ आरोपित करते हैं उसको निक्षेप कहते हैं। निक्षेप तो विषय में होते हैं, ज्ञान के विषय में, यानी ज्ञेय में, ज्ञेय पदार्थ में हम उस पर आरोपित करते हैं। और ये जो नए हो गए वो ज्ञान में लगेंगे। तो ये जो निक्षेप है, किसी वस्तु को समझना है तो हम, यदि हमको इस रूलर को, पट्टी को समझना है, तो हम खाली ये देखो ऐसा थोड़ी करेंगे, तो इसका नाम रखेंगे, तो ये पट्टी है हम कहेंगे, हाँ, अंग्रेजी में इसको रूलर कहेंगे, तो ये उसका नाम हुआ। अभी है तो पट्टी, बच्चों को खिलौने में या ऐसा किस समझाने के, हम कहें ये राजा है और फिर ये रानी है, ये पेन को हमने रानी कह दिया, तो ये हमने क्या किया, स्थापना की उसको, स्थापना निक्षेप कहते हैं उसको। पहले तो नाम निक्षेप हुआ, ये स्थापना निक्षेप हुआ। अब द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप में क्या होता है? द्रव्य निक्षेप में तो भूत और भविष्य की पर्याय को भी वर्तमान में, कि द्रव्य तो वही है, वर्तमान में उसका उपचार करना, उसको द्रव्य निक्षेप कहेंगे। और भाव निक्षेप में वर्तमान में जो अवस्था चल रही है उस रूप ही वो है द्रव्य, उसको भाव निक्षेप में लेते हैं। अब यहाँ बंधकों की बात चल रही है, बंधकों पर भी ये चार बातें लगाए, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो हम कहेंगे नाम बंधक, फिर स्थापना बंधक, द्रव्य बंधक और भाव बंधक। देखो यहाँ चार बातें, नाम बंधक, स्थापना बंधक, कौमा देना वहां, द्रव्य बंधक और भाव बंधक। उनमें नाम बंधक, तो बंधक यह शब्द ही है, यह बंधक शब्द है ना, बंधने वाला, जो जीव बंधक, अजीव बंधक आदि आठ भंगों में प्रवृत्त होता है। ये धवला का पहला भाग थोड़ा फिर पढ़ना पड़ेगा। ये आठ, उसमें हमने देखे थे, जीव है, एक अजीव है, जीव और अजीव दो भेद के, फिर एक जीव, अनेक अजीव, अनेक जीव, एक अजीव, अनेक जीव वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन परमिटेशन के देखे थे। ये आठ प्रकार उसमें होंगे, ये आठ बंधक हैं। यह नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करके स्थित है, क्योंकि नाम की सामान्य में प्रवृत्ति देखी जाती है। ये कोई नाम रखा, जैसे हम बच्चे का भी नाम रख देते हैं, तो ये नाम निक्षेप हुआ, उस द्रव्य को हमने विशेष नाम से जाना। चूंकि दिखाई देने के अनंतर समय में ही नष्ट हुए पदार्थों में संकेत ग्रहण करना नहीं बनता, क्या कहते हैं? ये द्रव्यार्थिक नय क्यों कहा? यदि पर्यायार्थिक नय से उसका नाम लगते तो पर्याय एक क्षण में, अनंत समय में नष्ट होने वाली है, तो उस चीज का हम संकेत कैसे करते हैं? इसलिए वो द्रव्य तो कायम टिकने वाला है, उसको हम कुछ नाम देकर बुलाएंगे, दिखा ना? चूंकि दिखाई देने के अनंत समय में नष्ट हुए पदार्थ, यानी पर्याय की ओर से अगर हम द्रव्य को देखेंगे, तो पर्याय तो एक समय की है, अभी दिखाई दी, उसका नाम रखे तो अगले समय वो है ही नहीं है, इसलिए उसको संकेत ग्रहण करना नहीं बनता, यानी उसका नाम रखना नहीं बन सकता। तो नाम निक्षेप जो है, या नाम जो रखा जाता है, वो द्रव्यार्थिक नय से रखा जाता है। जैसे हमने बच्चे का नाम रखा, तो वो कितने दिन का था? आपने अपने बच्चे का नाम कब रखा था? वो 2 महीने का था, 3 महीने का था, कोई 1.25 महीने में रख देते ना? या अभी आप लोग फॉरेन में रहते हो तो वो तो जन्म के पहले से निश्चित करना पड़ता है, तो इमीडिएटली उनको बताना पड़ता है। तो जब हमने नाम रखा तो वो कितना था? इतना सा बच्चा, अभी 20 साल का हो गया। तो हम किसको, वो बालकपने का नाम रखा है क्या? उस जीव का, उसको, वो कोई व्यक्ति विशेष है, उसका नाम रखा है, उसकी पर्याय तो बदल गई है। बालक को देखकर अगर हम बालक है उतना ही नाम उसको ही रखेंगे, तो बालक जब बड़ा होगा तो नाम चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो ये तो वही के वही व्यक्ति, वही का वही वो आदमी है, इसलिए वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ऐसा कहते हैं। काष्ठ कर्म, पोत कर्म, लेप्य कर्म आदि में सद्भाव व असद्भाव के भेद से जिनकी ये बंधक है ऐसी स्थापना की गई हो, वे स्थापना बंधक है। काष्ठ कर्म ने लकड़ी की कोई चीजें बनानी, पोत कर्म ने वो पोतना है, वो लिंपना कहते ना, हाँ लिंपन करते, उससे मिट्टी से ऐसे लेप देकर कोई चीजें बनाती है। लेप्य कर्म में भी वही आता है, आदि में सद्भाव व असद्भाव के भेद से। देखो ये फिर थोड़े अपने बुद्धि मेमोरी में ले लेना, यहाँ स्थापना निक्षेप की बात हो रही है। तो स्थापना निक्षेप हम किस में, जैसे कोई लकड़ी की पुतली है तो हम उसमें ये राजा है, ये रानी है, ये कुछ ऐसा वहाँ स्थापना करते, या शतरंज के जो मोहरे है उसमें भी ये राजा रानी वजीर ये प्यारे ऐसी सारे उसमें स्थापना करते हैं। तो वहाँ तो अतदाकार स्थापना होती है, वैसा शेप नहीं जैसे राजा रानी का, तो उसको कहते अतदाकार स्थापना। और जैसा मनुष्य का है वैसे ही अगर चित्र बनाते उसमें स्थापना करते तो तदाकार स्थापना। जैसे हम महावीर भगवान की मूर्ति बनाए तो वो मनुष्य जैसा उसका आकार है तो वो तदाकार स्थापना। अब सामने महावीर भगवान नहीं है तो कभी कभी वो लौंग या अक्षत लेके स्थापना की जाती है, वो अतदाकार स्थापना। उसी को यहाँ सद्भाव असद्भाव कहा। सद्भाव का भेद यानी सद्भाव रूप स्थापना यानी तदाकार रूप, और असद्भाव उस भाव जैसा नहीं है, अन्य जैसा है, तो उसको असद्भाव कहते हैं। यानी किसी लकड़ी की वस्तु में या मिट्टी से बनाई हुई वस्तु में या चित्रकारी में या अन्य किसी में, उसमें तो बहुत सारे 8-10 ऐसे नाम दिए थे कौन कौन सी चीजों से वस्तुएं बनाते हैं, उसमें यह अमुक व्यक्ति है या यह अमुक चीज है ऐसे हम निश्चित कर देते हैं तो उसको कहते हैं स्थापना निश्चय। तो हमने कहा, हमने इसको कहा ये जीव है, ये बंधक है, ऐसा कह दिया। तो ये हमने इसमें जीव की बंधक की स्थापना कर दी, तो ये स्थापना बंधक हो जाएगा। समझाने के लिए तो हम कहते ना, जैसे हमने चित्र जो रहा है, तो ये जीव है या शेर है, ये बंद कर रहा है, ये बंधक है, तो स्थापना होगी उसकी। देखो यहाँ क्या कहते हैं, काष्ठ कर्म, पोत कर्म, लेप्य कर्म आदि में, यानी अन्य अन्य चीजों में, लकड़ी की वस्तु हो या कोई मिट्टी की वस्तु हो या पत्थर की वस्तु हो, उसमें सद्भाव व असद्भाव के भेद से यानी तदाकार या अतदाकार रूप से जिनकी ये बंधक है ऐसी स्थापना की गई, उसमें हमने स्थापना की कि यह बंधक है, यानी उसमें भी हमने जीव की स्थापना की ना, बंधक की स्थापना की, वे स्थापना बंधक है। यह निक्षेप भी द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन से स्थित है, क्योंकि वह यही है, ऐसे एकत्व का निश्चय किए बिना स्थापना निक्षेप बन नहीं सकता। जैसे महावीर की मूर्ति में ये महावीर भगवान है ऐसी स्थापना की, तो द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन लेकर ही करेंगे, क्योंकि वे तो अभी सिद्धालय में विराजमान है, फिर भी उनकी अरिहंत अवस्था की, जो अरिहंत अवस्था के जो महावीर भगवान है ये वे है, ऐसा हम उसमें स्थापना करते हैं। तो यहाँ भी द्रव्यार्थिक नय ही लागू होता है। अब द्रव्य बंधक की बात करेंगे। जो द्रव्य बंधक है वे आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार के। देखो द्रव्य बंधक उसे कहेंगे जो भविष्य काल में और भूतकाल में भी जो बंधक थे उसको वर्तमान में बंधक कहना। अब उसमें आगम और नो आगम ऐसे दो भेद करेंगे, ये पहले में बहुत बार ये हुआ है फिर भी रिपीट करेंगे। आगम किसको कहना, तो बंधक संबंधी जो अपने शास्त्र है आगम है उसका जानने वाला जो जीव है उस जीव को आगम द्रव्य बंधक कहेंगे। परंतु उसमें एक कंडीशन है, वर्तमान में वो उस शास्त्र का उपयोग उसका उपयोग उसमें नहीं है, वो तो जान रहा है शास्त्र को जान रहा है, कौन से बंधक संबंधी शास्त्र को जानने वाला जीव। परंतु वर्तमान में अभी मान लो वो व्यापार कर रहा है या कोई अन्य न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो अभी उसका उपयोग कहाँ है, अन्यत्र है, अभी शास्त्र में नहीं है, फिर भी वो शास्त्र का जानने वाला जीव है इसलिए उसको आगम द्रव्य बंधक कहेंगे। ये धवला पहली पुस्तक में इसकी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, फिर भी अभी हम हर समय हम भी भूल जाते हैं ना तो हर बार उसको भी दोहराएंगे। अब नो आगम किसको कहना, तो नो आगम तो जानने वाला जीव है उसको तो आगम कहा। अब जीव स्वयं नहीं है परंतु उस जीव के साथ जो शरीर है उसको भी नो आगम द्रव्य बंधक कहेंगे। शरीर तो कोई बंद करता नहीं है फिर भी जीव के साथ वो है इसलिए उसको भी नो आगम द्रव्य बंधक कहेंगे। अब उसके आगे भी भेद होंगे वो जब आएंगे तब देखेंगे। देखो जो द्रव्य बंधक है वे आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार के हैं। बंधक प्रावृत के जानकार जानकार यानी जानने वाले जीव, किंतु उसमें अनुपयुक्त जिसका उपयोग उसमें नहीं है जान रहे। जैसे अभी आप गणित के जानकार हो परंतु अभी वर्तमान में उपयोग अपना शास्त्र ज्ञान में चल रहा है तो गणित में अनुपयुक्त है आप है? वैसे जो बंधक संबंधी शास्त्र को जानने वाले हैं और वर्तमान में अभी वर्तमान में हाल में उसमें वो उपयोग नहीं लगा है ऐसे जीव आगम द्रव्य बंधक है। यहाँ जीव को ही बंधक कहा है, वहाँ आगम द्रव्य बंधक। आगम क्योंकि आगम के जानकार है और द्रव्य बंधक क्योंकि अभी वर्तमान में वो उस पर्याय रूप से परिणत नहीं है परंतु वो जानने वाले हैं। शंका, जो आगम के उपयोग से रहित है उस जीव को, उस जीव द्रव्य को आगम कैसे कहा जा सकता है? यह कोई दोष नहीं है क्योंकि आगम संज्ञा को प्राप्त न होने पर भी आगम के संस्कार सहित एवं पूर्व काल में आगम संज्ञा को प्राप्त जीव द्रव्य को आगम कहना पाया जाता है। जिसने पहले वो आगम पढ़ा है उस जीव को आगम कहा है। देखो हम तो अभी तक ये द्रव्य आगम यही आगम है ऐसा समझते थे परंतु सच देखा जाए तो आगम तो भगवान की वाणी के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो आगम है। तो जीव द्रव्य को आगम कहा क्योंकि जानने का कार्य तो यहाँ होता है। पुद्गल तो जड़ है, ये जड़ है ना, इसमें तो कुछ ज्ञान नहीं है। इसको पढ़कर हम जानेंगे तो हम स्वयं आगम हो जाएंगे, इसलिए जीव को यहाँ आगम कहा है। ये आगम तो शास्त्र में नहीं है, जीव के ज्ञान में है, बुद्धि में है, इसलिए जीव द्रव्य को यहाँ आगम ऐसा कहा दिया। पर यहाँ तो वर्तमान में उपयोग से रहित है जीव, फिर भी उसको क्यों आगम कहा? क्योंकि उसके ज्ञान में वो संस्कार वाली जो पर्याय वो चलती रहती है, वो धारणा में जो है वो चलता रहता है, इसलिए उसको आगम कहा। यहाँ क्या लिखते हैं देखिए दूसरी लाइन में, आगम संस्कार सहित, अभी तो उसके संस्कार चल रहे हैं, और पूर्व काल में आगम संज्ञा को प्राप्त जीव, यानी पहले पूर्व काल में उसने आगम का अभ्यास किया हुआ है इसलिए उस जीव को अभी भी आगम कहेंगे। आपको नहीं पता श्रेणिक राजा अभी कहाँ है? पहले नरक में, अभी भी हम उसको श्रेणिक राजा कह रहे हैं ना। अभी क्या है वे? अभी तो नारकी है, पहले नरक के नारकी है, फिर भी हम उनको सैनिक राजा कहकर बुलाते हैं और हम समझते भी है कि वो पूर्व के सैनिक राजा है, अभी तो वो पहले नरक के नारकी है। ऐसे ही जो पूर्व काल में जो आगम के ज्ञाता है उनको वर्तमान में भी आगम कहने की पद्धति है, इसी को द्रव्य निक्षेप कहते हैं। यानी भूत और भविष्य काल के पर्याय को वर्तमान में कहते हैं। जैसे कोई युवराज है तो उसको भी राजा कहकर पुकारते हैं, सेठ का भी बच्चा है अभी बड़ा भी नहीं हुआ उसको भी नौकर चाकर क्या कहते हैं, सेठ कहते हैं ना, वैसा। इसी से जिस जीव का आगम संस्कार भ्रष्ट हो गया है उसका ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके भी आगम संज्ञा पाई जाती है। पूर्व काल में पढ़ा था अभी भूल गया उसको भी आगम कहेंगे, क्योंकि वो भूतकाल का उपचार किया जाएगा अभी वर्तमान में। अब ये जो नौ आगम है ने, वो जीव नहीं है परंतु जीव के संबंध में अन्य कोई पदार्थ, तो अन्य पदार्थ कौन हो सकते हैं? या तो जीव का शरीर हो सकता है, उसके कर्म हो सकते हैं, या अन्य कुछ हो सकता है। तो उसके भी ये नौ आगम जो है उसके तीन प्रकार बताए, ज्ञायक शरीर, भव्य और तद व्यतिरिक्त के भेद से नौ आगम द्रव्य बंधक तीन प्रकार के हैं। उनमें ज्ञायक शरीर और भावी द्रव्य बंधक ये दो भेद सुगम है। अभी क्या कहा, ज्ञायक शरीर ने जो जानने वाला जीव है, ज्ञायक जीव की बात है ना, जानने वाला उस जीव का जो शरीर है उसको ज्ञायक शरीर, हाँ, नौ आगम द्रव्य बंधक का शरीर तो कुछ बंधने वाला नहीं, फिर भी उपचार से शरीर को भी यहाँ बंधक कहा है। जीव को तो बंधक कहेंगे इसलिए आगम द्रव्य बंधक हो गया। नौ आगम में जो जानने वाला नहीं, अभी जो जान नहीं रहा है, जिसने अभ्यास नहीं किया है अभी तक, उस जीव की बात है। तो उसमें तीन भेद है, एक तो जीव का शरीर, जीव के शरीर में भी उसका अभी का शरीर, उसका भूतकाल का शरीर और उसका भविष्य का शरीर, तीनों को ही हम नौ आगम ज्ञायक शरीर द्रव्य बंधक, नौ आगम द्रव्य बंधक कहेंगे। अब दूसरा एक प्रकार है भावी, अभी तो आगम का ज्ञाता नहीं है परंतु भविष्य काल में आगम का ज्ञाता है, तो वो सारे क्या हो गए, अभी आगम का ज्ञाता नहीं है ना, इसलिए नौ आगम का। पहले तो शरीर को कहा था, अब उसी जीव को कह रहे। जैसे हम अभी बंधक शास्त्र अभी हम पढ़े नहीं है, अभी शुरू किया है, परंतु भविष्य में हम जानने वाले हैं, तो हम कौन हो जाएंगे, हाँ, नौ आगम कौन से, भावी, भविष्य में जानेंगे ना, तो भावी, हाँ, भव्य कहा, भव्य और भावी एक ही बात है, तो भव्य ने जानने वाले हैं भविष्य में, तो उसको क्या कहेंगे, भावी नौ आगम द्रव्य बंधक, ये भव्य कहा। इसको पहला ज्ञायक हुआ, ज्ञायक शरीर यानी ज्ञायक का शरीर, दूसरा भव्य ने यहाँ जीव लिया जो भविष्य में जानने वाला है, और तीसरा तद व्यतिरिक्त यानी इन दोनों के अलावा। तो इन दोनों के अलावा क्या हो सकता है, कर्म आदि हो सकते हैं। तो उसमें देखो दूसरी लाइन में, ज्ञायक शरीर और भावी द्रव्य बंधक ये दो भेद सुगम है। ऊपर भव्य लिखा उसी को यहाँ भावी लिखा है। तद व्यतिरिक्त द्रव्य बंधक, तद व्यतिरिक्त इन दोनों के अलावा दो प्रकार के हैं, कर्म बंधक और नो कर्म बंधक। उस जीव के कर्मों को यहाँ कर्म बंधक कहा, और कर्म के अलावा अन्य और कोई चीजें उसको नो कर्म बंधक कहा। उनमें जो नो कर्म बंधक है वे तीन प्रकार के हैं। ये अन्य जो वस्तु है वे कैसी कैसी है, सचित्त नो कर्म द्रव्य बंधक, अचित्त नौकर्म द्रव्य बंधक और मिश्र नौकर्म द्रव्य बंधक। अब उसमें सचित्त की बात करें, जैसे सचित्त नौकर्म द्रव्य बंधक, जैसे हाथी बांधने वाले, घोड़े बांधने वाले इत्यादि। अच्छा, ये अन्य जो बांधने वाले जीव है उसकी बात, हाथी को बांधने वाले, घोड़ों को बांधने वाले, उसको भी नौ कर्म द्रव्य बंधक कहा। अचित्त नौ कर्म द्रव्य बंधक, जैसे लकड़ी बांधने कट यानी चटाई, एक कोई वस्तु बनाते ना तो ये बांधने वाले कहा। मिश्र नौ कर्म द्रव्य बंधक, जैसे आभरणों से हाथियों के बांधने वाले इत्यादि, अन्य वस्तुओं को बांधने वाले ऐसा जीव। सचित्त में हाथी घोड़ा वगैरह लिए, अचित्त में चटाई सुपा लकड़ी वगैरह लिए उनको बांधने वाले, और मिश्र में आभरणों सहित हाथी घोड़ा वगैरह। अब जो कर्मों के बंधक है, पहले नौ कर्म के बंधक यानी अन्य चीजें बांधने वाले जीव है, अभी कर्म बंधने वाले कर्म के बंधक जो है वे दो प्रकार के हैं, इरियापथ कर्म बंधक और सांप्रायिक कर्म बंधक। ये नाम कभी सुना है? एरिया समिति, हाँ हाँ हाँ, ये आचरण की बात है और बंधन की बात है। एरिया समिति जो आती है वो मुनियों के समितियों में, बराबर है। और यहाँ जो है एरिया क्यों कहा, एरिया पथ क्यों कहा, आते और वैसे चले जाते, एरिया पथ आश्रय कहा उसको, यानी उनमें स्थिति और अनुभाग का बंध नहीं होता है, प्रकृति और प्रदेश का बंध होता है। बंध कर कर्म का बंध होता है तो चार प्रकार का, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति बंध का अर्थ है विशिष्ट प्रकृति का बंध होना, प्रदेश बंध का अर्थ होता है कितनी संख्या में परमाणु बनते हैं उसको कहते हैं प्रदेश बंध। स्थिति बंध उसको कहते हैं कि वो बंधने के बाद कितने बार कितने काल तक जीव के साथ रहेगा, बाद में उदय आएगा उसको कहते हैं स्थिति बंध। और अनुभाग बंध उसको कहते हैं उदय आने पर कैसा क्या फल देगा उसको अनुभाग बंध कहते हैं। तो ये जो चार प्रकार के बंध है उसमें से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग के कारण होता है, और स्थिति बंध अनुभाग बंध कषाय के कारण होता है। जब कषाय कहते हैं तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय सबको मिलकर कषाय कहा। कषाय का दूसरा नाम है सांप्राय, इसलिए जब सांप्रायिक बंधक कहेंगे तो कषाय सहित वाला जीव समझना, और इरियापथ बंधक कहेंगे तो कषाय रहित कहेंगे। तो कषाय रहित है और बंध भी हो रहा है, ऐसे कोई जीव आपको मालूम है जिसके कषाय नहीं है परंतु जो बंध कर रहा है? हाँ, तेरवा, अकेला तेरवा, ग्यारहवे बारहवे और तेरहवे गुणस्थान। तो दसवें गुणस्थान तक मोहनीय है, सूक्ष्म लोभ का उदय है ना वहाँ दसवें, यानी दसवें तक कषाय है, और ग्यारहवा वाला पूर्ण वितराग है अंतर्मूल तक, बारहवा वाला भी पूर्ण वितराग हुआ है परंतु अभी वे छद्मस्त है। ग्यारहवे बारहवे वाले छद्मस्त वितराग है, सर्वज्ञ नहीं हुए परंतु वितराग है, इसलिए भी उनके एकमात्र साता वेदनीय का बंध है, अन्य प्रकृतियों का बंध नहीं है, इसलिए उनको इरियापथ बंधक का छद्मस्त है। और तेरहवे गुणस्थान वाले जो है उनके भी बंध है ना, योग है इसलिए बंध है, सयोगी गुणस्थान है, अयोगी होने पर उनका बंध मिल जाएगा। सयोगी है तेरवा गुणस्थान है इसलिए वहाँ भी साता वेदने का बंध है, परंतु उसमें भी स्थिति और अनुभाग नहीं होते, एकमात्र वो प्रकृति बनती है, इसलिए उसको कहा है इरियापथ कर्म बंधक। देखो अभी यहाँ दो प्रकार है ना, इरियापथ कर्म बंधक और सांप्रायिक कर्म बंधक। सांप्रायिक यानी कषाय सहित वाले जो कर्म का बंधन करते, उनमें जो इरियापथ कर्म बंधक है वे दो प्रकार के हैं। ये जीवों की बात है ना, बंधक का बंध करने वाले जीव छद्मस्थ के लिए, अभी अभी हमारी बात यही हुई थी, तो छद्मस्थ इरियापथ बंधक कौन कौन है आप कहेंगे? सूर्यबेन आपको पता है, अभी हमने बात की छद्मस्थ इरियापथ बंधक, ग्यारहवा और बारहवा गुण स्थान वाली दो, और केवली क्रियापद बंधक तेल, क्योंकि चौदहवें वाले के लिए कोई बंधक नहीं है, वे अबंधक है, वहाँ बंधन ही नहीं क्योंकि वहाँ योग का भी अभाव हो गया, उसका नाम है अयोग केवल। जो छद्मस्थ है वे दो प्रकार के है, किसकी बात चल रही है, इरियापद बंधक वालों में पहले दो भेद किए छद्मस्थ और केवली, छद्मस्थ में ग्यारहवें और बारहवें वाले और केवली में तो तेरहवें वाले। अब ग्यारहवें बारहवें दोनों लिए ना, तो ये जो छद्मस्थ जो इरियापद बंधक है उसमें फिर दो भेद, ग्यारहवें वाले और बारहवें वाले से दो भेद करेंगे, तो उसको कहा उपशांत कषाय और क्षीण कषाय। जो सांप्रायिक बंधक है वे दो प्रकार के हैं। अभी सांप्रायिक बंधक यानी कषाय सहित जीव जो बंधक करते हैं उसमें दो भेद है, सूक्ष्म सांप्रायिक और बाहर सांप्रायिक। तो सूक्ष्म सांप्रायिक आपने नाम सुना है कभी, हाँ, किस कौन से गुणस्थान का नाम है, दसवें का, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म सांप्रायिक सूक्ष्म लोग है, सूक्ष्म लोग का बंधन नहीं कर रहे परंतु वो जीव सूक्ष्म लोग सहित है और बंध करने वाले, वहाँ बंध तो ज्ञानावरण आदि का होता है, तो उसको कहा सूक्ष्म सांप्रायिक बंधक। और बादर सांप्रायिक कहाँ तक कहेंगे, हाँ, पहले गुणस्थान से लेकर नौवे गुणस्थान तक बादर सांप्रायिक बंधक है। अब जो सूक्ष्म सांप्रायिक बंधक है वे दो प्रकार के हैं, सांप्रायादिक और बादर सांप्रायादिक। जो बादर सांप्रायादिक सांप्रायिक है वे तीन प्रकार के है, असांप्रायादिक, सूक्ष्म सांप्रायादिक और अनादि बादर सांप्रायिक। अभी इसमें क्या भेद है उसको देखेंगे हम। उनमें जो अनादि बादर सांप्रायिक है वे तीन प्रकार के हैं, उपशामक, शपक और अपशपकानुशमक, अपशपक अनुपशामक, जो शपक भी नहीं है और जो उपशामक भी नहीं है, इसलिए अपशपक अनुपशामक कहा। उनमें जो उपशामक है वे दो प्रकार के हैं, अपूर्वकरण उपशामक और अनिवृत्तिकरण उपशामक। उपशामक यानी उपशम श्रेणी वाले जीव, उसको उपशामक कहा। उपशम श्रेणी वाले में तो गुणस्थान चार है, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्रायण और उपशांत कषाय। तो उपशांत कषाय को तो इरियापद बंधक में लिया होगा, सूक्ष्म सांप्राय को सूक्ष्म सांप्राय बंधक में लिया, बादल सांप्रायिक में अभी ये दो गए, एक उपशामक वाले उसमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण दो गए, शपक में भी ऐसा ही गए। शपक दो प्रकार के हैं, अपूर्वकरण शपक और अनिवृत्तिकरण शपक। उनमें जो अपशपक अनुपशामक है वे दो प्रकार के हैं, अनादि अपर्यवसित बंधक और अनादि स्वपर्यवसित बंधक। उनमें जो भाव बंधक है, अब ये द्रव्य बंधक की बात पूरी हो, द्रव्य बंधक में हमने आगम द्रव्य बंधक, नो आगम द्रव्य बंधक है। नो आगम द्रव्य बंधक में ज्ञायक शरीर, भावी और तद्गतिरिक्त, तद्गतिरिक्त में नौ कर्म को भी लिया जो हाथी घोड़े वगैरह को बांधने वाले, और कर्म बंधक यानी कर्म को बांधने वाले, कर्म को बांधने वालों में भी इरियापद बंधक भी लिए और सांप्रायिक बंधक भी लिए। सांप्रायिक में भी सूक्ष्म सांप्रायिक और बाधर सांप्रायिक, उसमें भी बहुत सारे भेद उन्होंने बताए। अब आगे चलते हैं, अब भाव बंधक की बात है, चौथा भेद है ना, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, यहाँ भाव बंधक की बात चलेगी। भाव बंधक है वे आगम भाव बंधक और नो आगम भाव बंधक के भेद से दो प्रकार के। अभी आगम भाव बंधक यानी वो जानने वाला जीव, द्रव्य आगम में क्या लिखा था हमने, आगम द्रव्य बंधक में जानने वाला है परंतु वर्तमान में उपयोग से रहित है, उस शास्त्र का उपयोग नहीं है, कोई भी उपयोग से रहित कोई जीव नहीं हुआ है ना, वो शास्त्र का उपयोग नहीं है, उसमें उपयोग नहीं है उसका। अब भाव बंधक में क्या कहेंगे हम, आगम भाव बंधक में उस बंध संबंधी आगम का ज्ञाता वर्तमान में उसी में उसका उपयोग है, उसको आगम भाव बंधक कहेंगे। हाँ, हम आगम भाव बंधक है। देखो उनमें जो भाव बंधक है वे आगम भाव बंधक और नो आगम भाव बंधक के भेद से दो प्रकार के हैं। उनमें जो बंध प्रावृत्त के जानकर जानकार चाहिए, जानकर नहीं जानकार, क्योंकि वो जानने वाले हैं और उसमें उपयोग रखने वाले हैं, वे आगम भाव बंधक है। आगम के जानने वाले और उसी में आगम में ही जिनका उपयोग चल रहा है वर्तमान। नो आगम भाव बंधक जैसे क्रोध मान माया लोभ व प्रेम को आत्मसात करने वाले, अभी इतने सारे भेद तो बताए तो अभी यहाँ कौन सा विषय चलेगा। हाँ, इन सब बंधकों में कर्म बंधकों का ही यहाँ अधिकार है। कर्म को बांधने वाले जीव को हाथी घोड़े बांधने वाले उसका तो कोई अधिकार नहीं है, यहाँ कर्म बंधकों का ही अधिकार चल। अभी हमारे यहाँ 14 क्राइटेरिया बताए, उसको 14 मारना, सभी जीवों को गति की अपेक्षा विभाजित करेंगे तो 4 गति हो जाएगी, मनुष्य गति, देव गति, तीरंज गति और नर गति। उन्हीं सबको हम इंद्रियों की अपेक्षा से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई एक इंद्रिय है, कोई दो इंद्रिय है, कोई तीन इंद्रिय है, कोई चतुरिंद्रिय है, कोई पंचेंद्रिय। पहले तो गति में हमने विभाजित किया था, तो अभी पंचेंद्रियों में कौन कौन आए, सभी देह, सभी नारकी, सभी मनुष्य और कुछ पंचेंद्रिय तीरियंश सब इसमें आ गए। और जो तीरियंश है वो सब में डिवाइडेड है, एक इंद्रिय भी है, दो इंद्रिय भी तीरियंश है, तीन इंद्रिय भी तीरियंश है, चार इंद्रिय भी तीरियंश है और कुछ तीरियंश पंचेंद्रिय भी है। तो जब क्राइटेरिया बदल जाएगा तो अलग अलग ग्रुपिंग हो जाएगा, इसको कहते हैं मार्गणा। सभी ये हमारा बेस है। अब अलग अलग गतियों में कौन कौन सा बंधक जीव है उसकी बात करें। जहां को गमन किया जाए वह गति है शंका। गति की इस प्रकार निरुक्ति करने से, निरुक्ति यानी उसका अगर अर्थ ऐसा लगाएंगे कि जहां गमन करना है वह गति, तो हमें अभी बंबई जाना है तो बंबई को भी गति कहना पड़ा है। तो यहाँ कोई शंका का पूछता है, गति की अगर इस प्रकार आप डेफिनेशन करोगे तो ग्राम, नगर, खेड़ा, करवट आदि स्थानों को भी गतिपना प्राप्त होता है। यानी ग्राम, नगर, खेड़ा यानी कोई छोटा गांव है, बड़ा शहर है वगैरह वगैरह, सबको गति कहना पड़ेगा। समाधान नहीं, क्योंकि रूढ़ी के बल से गति नाम कर्म द्वारा जो निष्पर्याय निष्पन्न की गई है उसी में वो मैं शब्द अस्पष्ट है, गति शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो किसी शब्द विशेष का कोई भी अर्थ क्यों ना हो, रूढ़ी में जो उसकी बात चलती है, रूढ़ी से वो शब्द जिस अर्थ में यूज होता है, वापरा जाता है, उसी अर्थ में उसको हम लेते हैं। जैसे गाय जो है ना, गो शब्द संस्कृत में, उसका तो बहुत सारे अलग अलग अर्थ है, गमन करना उसको भी गो कहेंगे, परंतु गाय प्राणी को ही हम गो कहते हैं तो ये उसका रूढ़ी अर्थ है। तो ऐसा यहाँ भी गति विशिष्ट पर्याय को हम गति कहते हैं, उस अर्थ में ये रूढ़िगत शब्द यूज होता है। देखो रूढ़ी के बल से, यानी रूढ़ी क्या चल रही आ रही है कि गति नाम कर्म के द्वारा उसके निमित्त से जो पर्याय पाई जाती है, यानी अभी हमारी कौन सी पर्याय, मनुष्य पर्याय, ये एक समय वाले पर्याय की बात नहीं है, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय, तीरंज पर्याय, उसमें निमित्त कौन है, गति नाम कर्म, तो उसी को यहाँ गति कहते हैं। गति नाम कर्म के उदय के अभाव के कारण सिद्धि गति होती है वह अगति कहलाती है। आप कहेंगे सिद्ध गति तो किसको, पंचम गति किसको कहेंगे, वहां तो कोई गति नहीं है, गति नाम कर्म नहीं है, तो वहां गति नाम कर्म का अभाव हो गया है, सभी कर्मों का क्षय होने पर ही सिद्ध हो जाएगी। तो सिद्धि गति कहो या पंचम गति कहो, वो तो सचमुच देखा जाए तो अगति है। अथवा एक भव से दूसरे भव में संक्रांति का नाम गति, संक्रांति यानी ट्रांसफर होना, एक गति से दूसरे गति में जाना, उसको भी गति कहते हैं। और एक भव से दूसरे भव के लिए संक्रांति का न होना सिद्धि गति, क्योंकि भवों का अभाव हो जाता है तब उसको सिद्ध पर्याय प्राप्त होता है। ये जो 14 मार्गणा है उसमें एक एक शब्द का अर्थ बताया, पहले गति शब्द का अर्थ बताया, अब इंद्रिय शब्द का अर्थ बताएंगे। जो अपने अपने विषय में निरत हो वे इंद्रियां हैं, क्या कहते हैं, इंद्रिय क्यों कहा, अपनी अपनी स्वामी है, अपने अपने विषय में, दूसरे के विषय में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे आंख क्या करेगी, रूप को, वर्ण को ही ग्रहण करे, वर्ण को ही जाने, सुनने का काम नहीं करे, करने लिए वो अपना विषय जो आवाज है, शब्द है, ध्वनि है, उसको सुनेंगे, वो थोड़ा भी आप थोड़ी देर आंख का काम करे वो नहीं चलेगा। ये हम ही ऐसे है कि दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं। क्योंकि हम मानते हैं हम दूसरे का काम कर रहे हैं और कर सकते हैं, ये मानने तक हाँ करना भी चाहिए, नहीं तो हम स्वार्थी कहलाएंगे क्यों। ये विश्व का प्रत्येक पदार्थ स्व अर्थ अपना ही प्रयोजन कार्य करने वाला है, क्योंकि उस वस्तु को बोले ना अपना अपना प्रयोजन खुद कार्य करता है, परंतु इस बात का इस वस्तु स्थिति का हमें ज्ञान नहीं है तो हम ऐसे उल्टा पुल्टा मान लेते और दुखी हो जाते हैं। यहाँ क्या होता है, जो अपने अपने विषय में निरत हो वे इंद्रियां हैं, अर्थात अपने अपने विषय रूप पदार्थों में रमण करने वाली इंद्रिय कहलाती, अथवा इंद्र आत्मा को कहते हैं और इंद्रों के लिंग का नाम इंद्रिय है। वो चिन्ह है ना संसारी अवस्था में, इंद्रियों से वो जीव पहचाना जाता है, इसलिए आत्मा की प्रवृत्ति द्वारा उपचित किए गए उद्गत पिंड को काय कहते हैं। अभी काय की बात चल रही, गति इंद्रिय काय है, काय ने भी शरीर, तो क्या है आत्मा की प्रवृत्ति द्वारा, प्रवृत्ति द्वारा ये आत्मा का जो योग का कंपन होता है उसके द्वारा ये जो उद्गत पिंडों का ग्रहण होता है और उसमें से शरीर की रचना, तो उसके कहते उपचित किए गए इकट्ठा किए गए उद्गत पिंड को काय कहते हैं, अथवा दूसरी पद्धति से अर्थ करते हैं पृथ्वी काय आदि नाम कर्मों के द्वारा उत्पन्न परिणाम को कार्य में कारण के उपचार से काय कहा जाता है। ये नाम कर्म का नाम है पृथ्वी काय, ये कारण है, निमित्त की बात है, यहाँ कारण कौन है पृथ्वी काय नाम कर्म का नाम कर्म, उसके कारण हुआ क्या तो पृथ्वी जो इकट्ठे हुए परमाणु और वहाँ जो पृथ्वी की रचना हुई शरीर पृथ्वी के काय की रचना हुई तो उसको भी काय कहने में आता है। तो कारण का उपचार कार्य में हुआ, अथवा जिसमें जीवों का संचय किया जाए, सच्चे हुए संचय किया जाए, ऐसी व्युत्पत्ति से काय बना है। जीवों का संचय किया जाए जैसे हम कहते हैं वो काय, जैसे कोई काय के कौन कौन से भेद मालूम है आपको, हाँ षट काय हम कहते हैं, कौन कौन से षट काय, हाँ पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, अग्नि काय, वनस्पति काय और त्रस काय, तो उनमें अलग अलग जीवों के हम समूह करते हैं तो षट काय जीव कह देते हैं, तो ये काय ऐसा अर्थ हुआ उसका। आत्मा को आत्मा की प्रवृत्ति से उत्पन्न संकोच विकोच का नाम, संकोच विकोच योग है, क्या कहते हैं आत्मा की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति ने आत्मा को कुछ उसमें प्रयत्न होता है, क्या होता है अभी शरीर के परमाणु है, मन के परमाणु है, वाणी के परमाणु है, उसके प्रति आत्म प्रदेशों का जो चंचलपना होता है, परिस्पंदन होता है, कंपन होता है, आत्मा की प्रवृत्ति से उत्पन्न संकोच विकोच का नाम, संकोच विस्तार, विस्तार या नहीं लेना है परंतु उसका परिस्पंदन लेना है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, यह विकोच का नाम उसको, उसका नाम योग है, अर्थात मन वचन और काय के अवलंबन से जीव प्रदेशों में परिस्पंदन होने को योग कहते हैं। वो सारे स्कंध है उसमें आत्मा की प्रवृत्ति होती है उनको ग्रहण करने की, तो वहाँ उसके योग है, स्पंदन है। तो ये गति इंद्रिय काय योग, फिर वेद किसको कहना, आत्मा की प्रवृत्ति से मैथुन रूप समूह की उत्पत्ति का नाम वेद है, ये मोहनी का वेद है ना, या भाव वेद की यहाँ चर्चा चल रही, तो उसे भाव को वेद का। फिर आगे कसाय सुख दुख रूपी खूब फसल उत्पन्न करने वाले कर्म रूपी क्षेत्र का जो कर्षण देते हैं करते हैं वे कसाय है। क्या कहते हैं, एक किसान क्या करते हैं बरसात आने के पहले, तो जमीन है खेत है उसको पहले हल चलाएंगे और उसको बोने योग्य बना देंगे, उसका कर्षण करेंगे, मराठी में उसको मशागत करते हैं, जो कुछ पहले वो जलाना है और फिर उसको हल चलाने खेरे छे, अच्छा गुजराती में खेरे छे, हाँ मराठी में मशागत करते हैं और हिंदी में जो कुछ कर्षण करते हैं, यहाँ लिखा है ना, तो खेत का कर्षण करते हैं। यहाँ कौन से खेत की बात चल रही है, कर्म रूपी खेत। अब ये जो किसान जो खेत को तैयार करते हैं तो उसमें तो बीज बोते हैं, उसमें से फल मिलते हैं, तो यहाँ क्या है कर्म रूपी खेत है, उनको जो कर्षण करती है और उसमें से क्या फसल उत्पन्न होती है, सुख दुख रूपी फसल उत्पन्न होती है, कर्म रूपी खेत में से सुख दुख रूपी फसल उत्पन्न होती है, परंतु ये करने वाले कौन है, तो कषाय, तो कषाय के कारण कर्मबंध होता है और कर्मबंध से जीव सुखी दुखी होता है। ये सच्चे सुख की बात नहीं है, सुखी दुखी ने हर्ष विषाद के जो परिणाम है संयोगों में उसकी यहाँ बात है। अब ज्ञान की बात है, नाने लिखा ना, ना जो यथार्थ वस्तु का प्रकाशक है अथवा जो तत्वार्थ प्राप्त कराने वाला है वह ज्ञान है, ये ज्ञान की परिभाषा बताई। संयम किसे कहना, व्रत रक्षण समिति पालन कषाय निग्रह दंड त्याग और इंद्रिय जय का नाम संयम है। देखो संयम का खाली यम नहीं था, केवल देखा देखिए व्रत करना उसको तो द्रव्य यम कहते हैं, सम शब्द लगाए तो सम्यक प्रकार से शब्द स्थापित होता है, यानी जो सम्यक तो सहित व्रत आदि होते हैं उसी को संयम कहते हैं। ये बात पहले भी लवला में आ चुकी है, लवलाकार ने ही लिखा है जो सम्यक तो बिना के जो व्रत तप आदि होते हैं उसको द्रव्य यम कहते हैं और जो सम्यक तो सहित व्रत तप होते हैं उसको ही संयम कहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं समाज में भी लोग कहते हैं आप तो घर में बैठे बैठे आपको क्या अधिकार है, वे संयमी तो है, संयम तो है उनके, ऐसा आरोप होता है ना, तो संयम कहना किसको इसकी बात का हमें पता नहीं। निश्चय से संयम तो आत्मा में लीनता है और ऐसे आत्मलीनता रूप जो है जीव उसके जो शुभ राग आते हैं और बाह्य व्रत आदि का सहज पालन होता है उसको भी संयम कह देते हैं। तो यहाँ संयम किसको कह देखो, व्रत रक्षण समिति का पालन, ये समिति मुनियों के होती है पांच समिति, अभी अपना विषय चल रहा है प्रवचन शायद याद है पांच समिति कौन सी, हाँ एरिया समिति यानी वो देख कर चलना हो, भाषा समिति कितनी तो प्रिय भाषा होती है, एषणा समिति आहार समिति वो अनुदिष्ट आहार होता है वो सारे अंतराय को टाल कर दोषों को टाल कर, हाँ आदान निक्षेपण वस्तुए रखते हुए उठाते हुए बराबर पीछे से देख छोड़ कर परिमार्जन करके और प्रतिष्ठापन मलमूत्र निक्षेप होता है तभी वो भी जीव जंतु से रहित स्थान पर करते हैं, ये समिति का पालन। कषायों का निग्रह, कषाय उत्पन्न ही नहीं होने उसको कषायों का निग्रह, हमारी पोजीशन क्या है, क्रोध तो खूब आता है परंतु अभी नहीं दिखाना ना बाहर, तो हमेशा अंदर ही अंदर उसको दबाना चाहते हैं, वो निग्रह नहीं। जब तत्व ज्ञान का अभ्यास होता है आत्मा का अनुभव होता है तो विशिष्ट कषाय उत्पन्न ही नहीं होती, उसकी मात्रा भी उसकी डिग्री में कम हो जाती है तो उसको कषाय निग्रह। दंड त्याग, ये नाम सुना है दंड त्याग का, हाँ पांचवे गुण स्थान में भी कुछ हमने वो त्याग अनर्थ दंड त्याग व्रत है,
अनर्थ है बिना काम का, दंड का त्याग करना। कौन सा दंड? दंड है कर्म का फल है जो हमें सजा मिलती है ना, उसको दंड है, उसको दंड देना है, उसको सजा देना। तो ये दंड क्यों होता है? कर्म बंध से दंड होता है। अनर्थ है बिना काम का, जैसे टीवी देखते हैं हम, वो सूर्य चल रही है और वहाँ हिंसा हो रही है या कुछ, तो हम उसको एडवाइस भी देते हैं, अरे मारना क्या करता है, आपने पिस्टल है क्यों नहीं मारता। तो ये बिना काम का हम कर्म बंध करते हैं और उसका दंड भी भुगतना पड़ता है, तो उस दंड का त्याग करना, इसको दंड त्याग करना। और इंद्रिय रेख का नाम संयम है, ये पांच इंद्रियों संबंधी उस विषय का त्याग है, उस संबंधी आसक्ति का त्याग हो जाता है, उसके भाव उठते ही उसको इंद्रिय विषय कहा, उसका नाम संयम है। अथवा सम्यक रूप से यम का नाम संयम, देखो यहाँ भी लिख लिया, मैं तो आगे पढ़ा ही नहीं था। सम्यक रूप से यम, यम यानी कोई योग व्रत तपा है उसको यम कहते हैं, और वो भी कैसे चाहिए? सम्यक रूप, सम्यक रूप तो कहीं है जब सम्यक तो से सही है। अब दर्शन की बात करें, प्रकाश रूप वृत्ति का नाम दर्शन है। प्रकाश रूप वृत्ति यानी पहले जो पदार्थ संबंधी जो आद्य ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं, दर्शन के बाद ज्ञान होता है। प्रकाश यानी वो ज्ञान रूप, ऐसे ही समझना उसको। ये प्रकाश यानी कोई लौकिक प्रकाश की बात नहीं है, चैतन्य प्रकाश जिसको कहते हैं, वस्तु संबंधी जानकारी होना। अभी जानकारी जब कहते हैं, ज्ञान जब कहते हैं, वो ज्ञान ही होता है, परंतु उसके पहले जो कुछ ग्रहण होता है, जो कुछ उसको रिसेप्शन होता है उसका, उसको यहाँ दर्शन का। लेशा, आत्म प्रवृत्ति में संश्लेषण करने वाली लेशा है। लेशा को हमने दूसरी पद्धति से डेफिनेशन की थी, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, यानी कषाय सहित वाली जो योग की प्रवृत्ति है उसको लेशा का। अथवा लिंपन करने वाली चाहिए ना, लिंपन न करने वाली लेशा ऊपर क्या लिखा है, अथवा लिंपती की लेशा न निकाल देना। लिंपन करने वाली लेशा है ऊपर देखिए, अथवा ऊपर चौथी लाइन में, अथवा लिंपती की लेशा, लिंपन करती है बंद करती है लेशा के द्वारा। लेशा क्या है? कषाय प्लस योग, तो कषाय प्लस योग से तो चारों प्रकार का बंध होता ही है, यानी वो लेशा क्या करती है? लिंपन करती है, कर्म से आत्मा को लिप्त करती है, इसलिए उसका नाम है लेशा। अभी भव्य भव्य की भव्य मार्गणा की बात, भव्य किसको कहना? जिस जीव ने निर्वाण को पुरस्कृत किया है अर्थात अपने सन्मुख रखा है वह भव्य है, और उससे विपरीत अर्थात निर्वाण को पुरस्कृत नहीं करने वाला जीव अभव्य है। देखो भव्य ने जिसमें निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता पड़ी हुई है, पर्याय उसको भव्य कहेंगे, भले वो अभी मिथ्यात्व में पड़ा है, कोई जीव निगोध में है फिर भी उसमें मोक्ष जाने की योग्यता है तो उसको भव्य कहेंगे। ऐसे कोई जीव है कि तीन काल में उनको सम्यक तो होता ही नहीं है, मोक्ष का तो सवाल ही नहीं, सम्यक तो भी नहीं होगा, क्योंकि जिसको सम्यक तो होगा वो नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन काल में तो मोक्ष जाएगा ही, तो इन जीवों में वो कभी नहीं होने वाला, इसलिए उनको अभव्य कहते हैं। किसी कर्म के कारण भव्य या अभव्य नहीं होते, ऐसे ही उनमें योग्यता पड़ी रहती है तो ये भव्य मार्गना हुए। अब दर्शन ये सम्यक्तो वाली मार्गना, तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, अथवा तत्वों में रुचि होना ही सम्यक्त है। ये छोड़ाला में आते ना, क्या आता है? परद्रव्य न तई भिन्न आप में रुचि सम्यक्त वाला, अपने आप में आत्म तत्व में जिसको रुचि है वही सम्यक्त। अथवा प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य की अभिव्यक्ति ही जिसका लक्षण है वही सम्यक्त है। ये तो उस जीव के कैसे भाव पाए जाते हैं उसकी अपेक्षा ये बहुत स्थूल वर्णन है। तो प्रशम यानी उसके प्रशम भाव यानी विशुद्ध परिणाम है, बहुत तीव्र कषाय नहीं है, शांत परिणाम ही है, उसको प्रशम कहते हैं। सम्वे संसार का भय और धर्म के प्रति लगाव है उसको, तो उसको संवेग कहते हैं। अनुकंपा यानी जीवों के प्रति दया का भाव है, वो अनुकंपा है। और आस्तिक्य, आस्तिक्य है सत्ता का होना उसे मान्य है, किसका आस्तिक्य, अपना भी पर का भी। लेकिन कोई तो ऐसे है ना मत वाले, कोई पर है ही नहीं, पर एक जीव ही है ऐसा भी मानने वाले, तो उसमें भी देव है, उसका स्वरूप है, ऐसा ही है, स्वर्ग नरक भी है, नहीं तो कोई तो आस्तिक्य ही नहीं उनके। अरे स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही पुराणों में बताई हुई बात है, उसको वो आस्तिक्य भाव नहीं है। देव होते हैं उनका ऐसा स्वरूप होता है, ऐसा जीव है उसका ऐसा स्वरूप है, ये आस्तिक्य भाव। सत्ता का स्वीकारना, छह द्रव्य है तो ये है पना की जो अपने को प्रतीत है, अंदर से श्रद्धा है, दृढ़ता है, वो आस्तिक्य भाव बोला है। वो समय दृष्टि जीव को वो होता है। अभी संगी किसको देना, संगे ने मन वाले प्राण, शिक्षा क्रिया उपदेश और आराध को ग्रहण करने वाला जीव संगी है। शिक्षा ने उसको पर हम ट्रेन कर सकते हैं, जैसे वो एनिमल ट्रेनिंग चलता है ना, कितने पक्षी है या बंदर है या कोई मछलियां भी है, उनको ट्रेन किया जाता है। तो जो ट्रेन हो सकते हैं, तो जो संगी है वही ट्रेन हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को फिर दोबारा वो जो कुछ है वो याद रहता है, और फिर वही बात वो करके बताते हैं, दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो मन के बिना वो बातें नहीं हो सकती। तो शिक्षा को समझते, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, शिक्षा जो दी जाती है उसको वो ग्रहण करते हैं, समझते हैं। क्रिया, कोई क्रिया को समझते हैं या उपदेश को समझते हैं, और आलाप को ग्रहण करने वाला जीव, आलाप यानी कथन, उसको भी समझने वाले जो जीव है वो संगी, उनके भी हित हित का विचार रहता है। उससे विपरीत अर्थात शिक्षा क्रिया भी को ग्रहण नहीं कर सकने वाला जीव असंगी है। ग्रहण करना यानी समझना, ग्रहण करने हाथ से लेना ऐसी बात नहीं। अब आहार किसको कहना, यह अंतिम मार्ग है ना, आहार मार्ग रहा है। तो आहार यानी ग्रहण, वो भोजन करते मुख से वो आहार उसकी की बात नहीं है। यहाँ नौकर्म आहार को आहार कहा है, यानी शरीर के परमाणुओं के ग्रहण को यहाँ आहार कहते हैं। देखो यहाँ क्या लिखे, शरीर बनाने के योग्य पुद्गल पिंड को ग्रहण करना ही आहार है। तो हम तो हर समय यह आहार का ग्रहण चल रहा है, तो उपवास करेंगे तो आहार का ग्रहण होगा कि नहीं होगा? हाँ, नौ कर्म वर्गना रूप आहार तो हर समय चल रहा है। अभी विग्रह गति में जो मोर सहित आता है ना, एक तर लेके आता है, तो उसको हो सकता है एक दो या तीन समय के लिए पहले आहार नहीं, परंतु वहाँ जाते ही शरीर ग्रहण शुरू हो जाता है, तो शरीर संबंधी परमाणु का ग्रहण हर समय चलता है। ऐसा नहीं कि एक बार शरीर बन गया अभी स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप, या सुबह थोड़ा एक उसने शरीर के परमाणु ले रखे, अभी थोड़ा नींद में आराम करेंगे, ऐसा नहीं होता, हर समय चलता है। शरीर के परमाणु भी हर समय लेता है जीव, और हर समय अनंत अनंत छोड़ता है। शरीर तो हमें तो वैसा की वैसा दिखता है रोज आईने के सामने जाते हैं तो, और यही मैं हूँ ऐसी तो बुद्धि पड़ी ही अंदर, परंतु अनंत परमाणु, जैसे अनंत परमाणु आते हैं अनंत चले जाते हैं, पुराने कितने रहते हैं कितने चले जाते हैं, तो ऐसा सारा वो धूल ही आने और जाने का कार्य चल रहा है, और उसी को उस धूल को ही हमने यह मैं हूँ, गोरा चिकना, ये जो कुछ है ऊंचा है लंबा है सीना है, उसको ही मान रखा है। तो यहाँ आहार की बात तो क्या बता रहे, शरीर बनाने के योग्य उद्गत पिंड को ग्रहण करना ही आहार है। अब अनाहार किसको कहेंगे, जो वो नहीं ग्रहण करते उसको अनाहार कहेंगे, अनाहार। उससे विपरीत अर्थात शरीर के योग्य उद्गल पिंड को ग्रहण नहीं करना अनाहार है। जैसे विग्रह गति में जाते समय एक मोड़ के मोड़ कर जाते ना, एक मोड़ लेकर गया, अभी कोई यहाँ से यहाँ जाना है ऐसा ऐसा गया, तो पहले मोड़ तक अनाहारक है और फिर वहाँ पहुँचते आहारक बन जाता है। इस तरह ये 14 मार्गणा उनके शब्द कैसे तैयार किए उसके यहाँ अर्थ बताएं। इन्हीं पूर्वोक्त 14 स्थानों में जीवों की मार्गणा अर्थात खोज की जाती है। लेकिन ना मार्गणा है खोज, देखो वो जीव को कहेंगे तो वो आहारक है, जीव को आहारक कहेंगे। वो मार्गणा में कोई जीव आहारक है कोई अनाहारक है, आहार करने वाले है कोई नहीं करने वाले, जीवों की बात है यहाँ। ऊपर की आहार ये लिखा था और ये जो दूसरे सूत्र के अर्थ में भी उन्होंने आहार कहा, आहार लिखा हुआ, परंतु आहार तो उस आहार का अर्थ क्या होता है उसकी बात है। देखो आहार शब्द तो कितने ही बार आते हैं, तो 5 वर्गणा में भी आहार नाम की वर्गणा है, आहार वर्गणा है जिसमें से औदारिक शरीर वैकृत शरीर आहार शरीर बनते हैं, उस उद्गल परमाणु के पुंज कोष्ठक को भी वहाँ आहार वर्गणा का है, यह आहार यह मार्गणा भी है। ऐसे अलग अलग आहार नाम की संज्ञा भी है, आहार को शरीर वो तो अलग बात है मुनियों के जो होता है, ऐसे आहार शब्द अलग अलग अर्थ में आता है। अब यहाँ तो नौकर्म शरीर को यानी शरीर के परमाणु को ग्रहण करने को आहार का, ऐसे आहार भी 6 प्रकार के सुना है कभी आपने पढ़ा होगा ना, वो कर्णानियोग की पुस्तक में भी लिखा है 6 प्रकार का आहार। अभी हमने जो देखा उसको क्या कहते हैं, नौकर्म आहार। देखो शरीर मन वाणी आदि जो परमाणु है उसको नौकर्म शब्द है, तो उसका ग्रहण करना उसको नौकर्म आहार कहते हैं। कर्मों का ग्रहण तो हर समय चलता है अपना, तो उसको हम कहेंगे कर्म आहार। नौकर्म का आहार तो एक समय विग्रह गति में तो रुक गया था, परंतु ये तो विग्रह गति में भी कर्म का बंध चलेगा, तो उसको कर्म का आहार तो हर समय चलता है। एक होता है कौलाहार, तिरियंच और मनुष्य जो मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं, कवल पोलियो वो लेते ना, तो उसको कौलाहार कहते हैं। फिर लेपाहार, लेपाहार लोकल एप्लीकेशन, वो एब्सॉर्ब होता है अंदर तभी तो लगाते हैं, बाम लगाएंगे तेल लगाएंगे और जो कुछ लगाएंगे वो आयोडेक्स सब अभी टीवी पर देखते हैं ना, वो सब देखना उसमें वो सारा लेपाहार। फिर ओजाहार, ओजाहार इंडे के अंदर जो जीव है वो अंदर का जो कुछ मटेरियल है उसका उसका ग्रहण करते हैं उसको ओजाहार कहते हैं। और मानसिक आहार, देवों के मानसिक आहार होता है। अभी ये 33 सागर वाले देव है तो 33,000 वर्ष के बाद वो कुछ भोजन की इच्छा होगी और कंठ में से अमृत झरेगा और उनकी तृप्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ हमारे जैसा कुछ भोजन बनाना है थाल भर के खाना ऐसी कोई बात नहीं है, तो उनकी तृप्ति हो जाती है। हम मुंह से अंदर नहीं डालेंगे तो हमारी तृप्ति नहीं होगी, मान लेते गले में से कोई झरेगा ना तो हो जाएगी तृप्ति। आपने कभी देखा नहीं, हम डॉक्टर लोग हैं ना अस्पताल में देखते क्या है, किसी को गले का कैंसर हो गया तो क्या करते हैं, अभी अंदर यहाँ ट्यूब डाल देते हैं और वो ट्यूब में से ही दूध डालो चाय डालो, सुबह उठते ही चाय पीने की इच्छा होगी तो उसमें चाय डालेंगे, डायरेक्ट पेट में जाता है, तो समाधान होगा जब तक कुछ जिस पर ये हमने 6 प्रकार के आहार देखे। अब तो इन पूर्वोक्त 14 स्थानों में जीवों की मार्गणा अर्थात खोज की जाती है। यानी जीव कहाँ कहाँ है, तो गतियों में तो चार गतियों में है, इंद्रियों में तो पांच प्रकार के इंद्रियों में पाए जाते हैं, ऐसा ऐसा उसकी खोज की जाती है। कषाय में तो कोई क्रोधी है, कोई रोगी है, कोई मानी है, कोई मायावी है और कोई अकषायी है, ऐसे उसमें जीवों की खोज की जाती है। ज्ञान मार्गणा में भी कोई मति ज्ञानी है, कोई सत ज्ञानी है, कोई अवधि ज्ञानी है, कोई केवल ज्ञानी है वगैरह वगैरह, उसमें ऐसा होगा ना, कोई ज्ञान वाले कोई बिना ज्ञान वाले नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए इनका नाम मार्गणा है। अब एक एक जो अभी मार्गणा बताए, क्राइटेरिया हमको बताए कि जिसमें हमको जीवों को ढूंढना है, अभी एक एक मार्गणा लेकर उसमें वो जीव बंधक है कि नहीं उसकी चर्चा करें। हमारा तो विषय बंधक संबंधी चल रहा है, मार्गणाओं में कौन कौन बंधक है उसकी बात चलेगी। गति मार्गणा ऊपर पढ़ेंगे, प्राकृत सूत्र पहले पढ़ेंगे। गदियाणु आदे न निरय गदी है, ये कौन सा बराबर है निरया बंधक। गति मार्गणा के अनुसार नरक गति में नारकी जीव बंधक है। यहाँ सूत्रोक्त बंध शब्द से बंधक का ही अभिप्राय है। वहाँ लिखा ना बंधा, लिखा बंधका नहीं लिखा, फिर भी बंध कहने से बंधक जीवों की ही बात है, यह जान लेना चाहिए। क्योंकि बंध और बंधक इन दोनों पदों की एक ही कारक में निष्पत्ति है। बंध करने वाला या बंध ऐसा भी कह सकते हैं उसी को, अर्थात ये दोनों ही शब्द बंध धातु से कर्ता कारक के अर्थ में उसको बराबर थोड़ा अस्पष्ट है कहीं कहीं, कर्ता कारक के अर्थ में क्रमशः अच व नृ प्रत्यय लगकर बने हैं। एक में बंधक क लगा है, वो बंध नाम का जो धातु है, धातु ने वर क्रियापद उसको धातु कहते हैं, तो उससे ये शब्द तैयार हुआ है, तो दोनों का अर्थ समान हो सकता है। फिर तिरिखा बंधक, तिरियंच बंधक है, तो चारों गतियों में हम बंधक है कह सकते कि नहीं कह सकते। हाँ नहीं, प्रेरणा में कहते नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते। हाँ, तो मनुष्य में चौथे गुण स्थान वाले तो बंधक नहीं होंगे, है ना, तो कुछ बंधक भी होंगे, कोई अबंधक भी होंगे, अभी देखते क्या कहते हैं। तिरियंच बंधक है क्योंकि उनमें बंधक के कारण भूत मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग पाए जाते हैं। ये जो प्रमाद है ना, वो योग कषाय में गर्भित कर देते हैं, तो कहते इन चारों को बंधक के कारण कहा है। उसी का दूसरा नाम प्रत्यय भी है, प्रत्यय आश्रव। तो कौन कौन से प्रत्यय है, यानी बंधक के कारण कौन है, मिथ्यात्व, अविरति को या असंयम को, एक ही बात है, कषाय और योग। ये भाव जो है वो तिरियंचों में भी पाए जाते हैं, इसलिए वे भी बंधक करने वाले। शंका, यहाँ सूत्र में तिरिख गति अर्थात तिरियंच गति ने ऐसा पद क्यों नहीं कहा। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अर्थापत्ति न्याय से उस अर्थ की उपलब्धि हो जाती है। जब तिरियंच कहते हैं वो तिरियंच गति वाले ही होते हैं, वो तो सहज ख्याल में आता है, इसलिए अलग से कहने की जरूरत नहीं है। अब पांचवा सूत्र, देवा बंधक, देव बंधक है। यह सूत्र सुगम है कि देवों में भी वो सारे उसके कारण बंधक के कारण पाए जाते हैं, तो देव भी बंधक है। मनुष्य बंधारी अस्थि अबंधारी अस्थि विकर्त भी होता है, बंधक भी है और अबंधक भी है। देखो, मनुष्य बंधक भी है और अबंधक भी है। कर्म बंधक के कारण मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, इन सब का अयोगी केवली गुणस्थान में अभाव हो जाने से अयोगी जिन अबंधक है, शेष सब मनुष्य बंधक है। अयोगी को छोड़कर सहयोगी केवली तक सभी बंधन है, क्योंकि मिथ्यात्वादी बंधन के कारणों से संयुक्त पाए जाते हैं। जिसको मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, ऐसे चौथे गुण स्थान वाले को बंध काय से असंयम कषाय और योग। अब जो जिसका असंयम भी छूट गया, ऐसे मुनिराज को बंध क्यों है? कषाय और योग। और जो ग्यारहवे बारहवे गुण स्थान वर्ती है या तेरहवे में गए, उनको योग के कारण बंध है। सभी कारणों का अभाव हो जाता है, ऐसे अयोगी गुण स्थान में वो एक बंधक नहीं है, अबंधक है। सिद्ध अबंधक, सिद्ध अबंधक है, क्योंकि सिद्ध बंध कारणों से व्यतिरिक्त मोक्ष के कारणों से संयुक्त होते हैं। ये बंध कारणों का वहाँ अभाव हो जाए गया है और मोक्ष के कारणों से वे सहित हुए हैं। शंका, बंध के कारण कौन से हैं? क्योंकि बंध और बंध के कारण जाने बिना मोक्ष के कारणों का ज्ञान नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? पहले में पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम बंधक है, हमें बंध हो रहा है, और फिर वो बंध के कारण वो भी जानना पड़ेगा, बंध क्यों हो रहा है, तभी तो उसमें से छूटने का कोई उपाय ढूंढेगा। इसलिए बंध के कारण पहले पूछे हैं। कहा भी है ऊपर जो गाथा लिखी उन्होंने, जे बंधयरा भावा मोक्षयरा भावी जे दुरच्छते जे चावी बंध मोखे अकराया ते विभिन्नया। अध्यात्म में जो बंध के उत्पन्न करने भाव करने वाले भाव है और जो मोक्ष के मोक्ष को एक बार के लगा एक बार बोल रहे ठीक फिर पढ़ती। अध्यात्म में जो बंध के उत्पन्न करने वाले भाव है और जो मोक्ष को उत्पन्न करने वाले भाव है, तथा जो बंध और मोक्ष दोनों को नहीं उत्पन्न करने वाले भाव है, वे सब भाव जानने योग्य है। अतएव बंध के कारण बदलाना चाहिए, ये शंकाकारी पूछ रहा है। समाधान, अब ये कौन से कारण है वो यहाँ बताते हैं। मिथ्यात्व और संयम कषाय और योग, ये चार बंध के कारण हैं। और सम्यक दर्शन, अभी मिथ्यात्व का उल्टा सम्यक दर्शन, असंयम के विरुद्ध संयम, कषाय के विरुद्ध अकषाय और योग के विरुद्ध अयोग, ये चार मोक्ष के कारण हैं। कहा भी है, देखो दूसरी गाथा पढ़ते हैं। मिच्छता विरहीय कषाय योगाय आसवा होन्ति दंशन विरमण निग्रह निरोधया संवरो होन्ति। एक तो आसव कौन से है और संवर कौन से उसको बताए। देखो नीचे उसका अर्थ देखा, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, ये कर्मों के आश्रय भाव है। आश्रय भाव है, इनके द्वारा कर्मों का आश्रय होता है, इसलिए उन भावों को भी आश्रय भाव कहा है। अर्थात कर्मों के आगमन द्वारे तथा सम्यक दर्शन संयम अर्थात विषय विरक्ति कषाय निग्रह और मनोवचन काय का निरोध, ये संवर अर्थात कर्मों के निरोधक भाव है, यानी कर्मों का आना रुक जाता है, उसको या संवर का है। तो ये संवर के जो भाव है वे कौन कौन से? समय दर्शन संयम विषय विरक्ति उसी को कहा, कषाय निग्रह और मनोवचन काय का निरोध। बाकी बातें कर करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवानी मस्तक नवो सना ले।